आप देखिए कि कुरान पाक का एक खूबसूरत अंदाज है कि सूरतें जिस तरतीब से आती हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल ऐसे ही आनी चाहिए जैसे कि हम सब कुरान पाक में देखते हैं। तकरीबन कुरान पाक का नेस हो रहा है, बल्कि अगर आप अपने माइंड में एक मैप बनाएं तो हम यूं जाके अब बिल्कुल स्टीप पे, स्टीप खत्म हो गई है, अब ये थोड़ी सी जो ऊपर चोटी होती है ना जहाँ अनस्टेबल होता है, फिर दोबारा वापस जाते हैं ना, तो 14, 15 और 16 इन तीन पारों को आप सोचेंगे ये मिडल में आ जाते हैं, फिर इंशाल्लाह 17 से डिक्लाइन चलते चलते हम 30th पे पहुंचेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इस वक्त अगर हम देखें तो हम अपने इस सफर की बिल्कुल पीक पे हैं, और पीक ऐसी चीज होती है कि जिसको सामने रखा जाए तो फिर इंसान को ये पता चल जाता है कि मुझे उरूज तक किस चीज ने पहुंचाना है। थोड़ा सा ये पहले मैंने कभी नहीं बताया मेरा ख्याल है, लेकिन इंशाल्लाह आप सबके लिए फायदा होगा। सूरत नाहल और सूरत बनी इसराइल और सूरत कहफ, इन तीन सूरतों को अगर आप एक नोट्स में अपने ऐसे स्टीप बना के और ऊपर तीन सीधी करके ले आए, ये तीन सूरतें वो हैं कि अगर इन तीन सूरतों पे अमल कर लिया जाए तो एक इंसान उरूज की सारी रेसिपी समझ जाता है। सूरत नाहल का मेन थीम शुक्र है, इसको सूरत सूरतुन नेम भी कहते हैं, नेमतों वाली सूरत। और जिस बंदे के अंदर अल्लाह की नेमतों का शुक्र हो गया, जिस बंदे को इस बात का यकीन है कि इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और रब कौन है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, तो फिर उसका दिल शुक्र से भरता है। तो आप कह लीजिए कि उरूज का नुक्ता आगाज अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा बनना। इस सूरत में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला बड़े खूबसूरत तरीके से हमें कायनात की एक सैर करवाएंगे, और मैं हमेशा इस सूरत को पढ़ते हुए महसूस करती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत किस्म की ट्रेन में हम बैठे हुए विंडो को देख रहे हैं, और एक जगह कैटल्स हैं तो थोड़ी दूर जाएंगे तो पहाड़ हैं, तो कहीं सब्जा है। कभी आपने साइड द यूके ट्रेवल किया हो या अगर आप स्कॉटलैंड साइड पे जाएं तो आप देखेंगे कि पहाड़ भी होते हैं और बड़े ग्रीन, और थोड़ी थोड़ी दूर आप देखते हैं कहीं बकरियां चर रही हैं, कहीं वहां फसलें काट के गंदम के उन्होंने ढेर बनाए हैं। तो सूरत नेम पढ़ते हुए दिल में अल्हम्दुलिल्लाह का वर्त रखिएगा। अगली सूरत जब शुरू होगी तो वहां बहुत कुछ आप और भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आइए सूरत का शुरू करते हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने हमें किस तरह से अपनी नेमतों का एहसास दिलाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुन नहल। अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलूहु सुभानहू व तआला अम्मा युशरिकून, आ गया अल्लाह का फैसला, अब इसके लिए जल्दी न मचाओ। किस चीज का फैसला? मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत का फैसला। और इसी तरह अगर इसको और डिफरेंट सिनेरियोस में देखें तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन हकीकत यह है कि सहाबा कराम बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे थे कि अल्लाह सुबहान तआला हमें इस मुल्क को छोड़कर दूसरी जगह जाने का हुक्म दे ताकि हम अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने का अजर पाए। फरमाया आ गया। इससे क्या पता चलता है कि हर चीज का वक्त जब आता है तो फिर उसके लिए इंसान को तैयारी पहले से रखनी चाहिए। फरमाया अब इसके लिए जल्दी न मचाओ, पाक है वो और बाला और बरतर है इस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। वो इस रूह को अपने जिस बंदे पर चाहता है, या रूह से मुराद जिब्राइल अमीन है, वही की तरफ इशारा है, जिस बंदे पर चाहते अपने हुक्म से मलाइका के जरिए से नाजिल करवाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही आती थी उस दौर में उस पर बहुत ज्यादा इतराजात थे, और आप मक्का के आखिरी दिन जहन में रख लीजिए कि टॉर्चर भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर के सहारे और घर के सहारे दोनों पूरे होते हुए दिखते हैं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का भी इंतकाल होता है और अबू तालिब भी वफात पा जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे वक्त में लोगों को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि ये नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलता, हकीकत यह कि इसके पास जो भी पैगाम आता है वो हमारी तरफ से होता है। इस हिदायत के साथ के लोगों को आगाह कर दो कि ला इलाहा इल्ला अना फत्तकूनी, मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, बस तुम मुझ ही से डरो। इसने आसमान और जमीन को बरहक पैदा किया, वो बहुत बाला और बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। किस किस्म का शिर्क वो लोग करते थे? अल्लाह के नबी को झुठलाना और अल्लाह की बात को ना मानना। आप देखिए कि नबी जब भी आते हैं वो अल्लाह की तरफ से आते हैं। किसी को ये कह देना कि हमारा नहीं ख्याल कि आपको किसी ने भेजा है और आप तो बस खुद से ही ये काम करने लग गए, तो ये थोड़ी सी किसी की डिस्ग्रेस होती है। लेकिन जब किसी को ये कहा जाए कि हमें पता है आप कहाँ से सीख कर आए, आपने किस से फायदा उठाया, तो इसमें इंसान को थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होता है। تو یہاں بھی یہ بات کر کے بتا دیا کہ یہ نبی تمہارے پاس جو آیا یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے. کبھی آپ ان آیتوں پہ غور کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی سوچ تو دیکھیے, کیا ان کے دل پہ گزرتا ہوگا کہ ایک بندہ نہیں مانتا, چلو کوئی بات نہیں, ایک نہیں مانتا تو دوسرا تو مان لے گا, دوسرا نہیں مانتا تو تیسرا. ہر وقت یہی کیفیات انسان کے اندر چلتی جائیں اور ایک جھٹلا رہا ہے دوسرا جھٹلا رہا ہے, کیسا تکلیف دہ منظر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں اس وقت جو مضمون سمجھنا ہے وہ صرف یہ سمجھنا ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ, لا الہ الا اللہ. پورے دین کا خلاصہ ہے یہ کہ انسان ایک رب کا بن کر اس کے تقاضے پورے کرنے کی فکر لگ جائے اس کو, تاکہ وہ اس چیز کو اپنی زندگی میں جگہ دے کہ میرے رب نے مجھے دیا. اور یاد رکھیے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی, کیوں دی؟ کوئی سوچ سکتا ہے نعمت کیوں دی؟ اس لیے کہ انہ لا الہ الا انا فتقونی. دو چیزیں اس میں, کہ اللہ کو بھی مانو, اس کی بندگی اختیار کرو, اور پھر مجھ سے ڈرو. لیکن ہوا کیا انسانوں کے ساتھ, کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی کہ میری بندگی کرو, اور ہم انہی چیزوں کے بندے بن گئے, یہ چیزیں ہماری معبود بن گئیں, اور دن رات ہماری انہی میں کوششیں چلنے لگیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تھوڑا سا کائنات پہ مزید غور و فکر کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں پہ غور کریں. خلق الانسان من نطفہ, غور تو کرو کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا, اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. ذرا سوچیے پیٹ کے بچے کو کن مشکل مراحل سے گزرتا ہے, لیکن پھر ایک سال کے اندر اپنا حق جتلانے والا, اور تین چار سال کا ہونے پہ بہن بھائیوں سے لڑنے والا, جھگڑے کرنے والا, اختلافات کرنے والا, اس طرح سے جھگڑے کرتا ہے کہ بعض دفعہ مائیں آدھا وقت گھروں میں صرف بچوں کے مقدمے ہی چلاتی رہتی ہیں کہ کیسے ہوا. جس رب نے بولنے کی طاقت دی اسی کے بارے میں جھگڑے. یہاں خاص طور پہ وہ جھگڑا ہے کہ میں نہیں مانتا اللہ کو, مجھے نہیں یقین کہ اللہ بھی ہے, کہ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی ہے اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی, ان میں تمہارے لیے جمال ہے. دیکھیے جمال ہے, اللہ کی کائنات میں جمال اور کمال اکٹھا ہے. ہمارے گھروں میں دو طرح کی چیزیں آتی ہیں, ایک ہے کمال کے لیے یعنی ضروریات کی, مشینیں ہیں, ویکیوم کلینرز ہیں, جھاڑو پوچھے کے ڈبے ہوں گے, موپ ہوگا, یہ کیا ہے, یہ ہماری ضرورت پوری کرتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہمارے گھروں میں ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں, بعض اوقات خوبصورتی کے لیے ہم سجانے کے لیے کچھ پھول رکھ لیتے ہیں. دو مختلف چیزیں ہیں. اللہ کی خوبی دیکھیے کہ اس کی چیزوں میں ایک ہی وقت میں جمال اور کمال دونوں ہیں. کیسے؟ آپ دیکھیے کہ بکریوں کو دیکھیے, خوبصورت لگتی ہیں دوڑتی بھی, اور ان میں کیا ہے کہ وہ دودھ دیتی ہیں. ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خوبصورت انداز سے بنائی کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ماشاء اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. لیکن یہ سوچ کب ہوگی؟ جب انسان فطرت سے رابطہ رکھے گا. آج جب بڑی بڑی یونیورسٹیز سے ہم پڑھ کے نکلتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں اللہ کی یہ کائنات دکھتی نہیں ہے, نہ ماں باپ سے بات کرنا اور نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے. تو آج کی اس پوری صورت کو اپنے لیے بہت ہی بڑی نعمت سمجھیں. اگر بہت دن سے کائنات پہ غور و فکر نہیں کیا تو پھر ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پہ غور کیجئے. فرمائے جب کہ تم صبح انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو گیزنگ کے لیے, جب کہ شام انہیں واپس لاتے ہو, وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. کل کے دور میں انسان گھوڑوں پہ اونٹوں پہ بیٹھ کے جاتا تھا, آج ہم جن چیزوں پہ بیٹھ جاتے ہیں کیا ہم جل سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں تم تو ادموے ہو جاؤ, تمہاری تو جان نکل جائے, لیکن کیا کبھی تم نے سوچا یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ یہاں سے آپ دیکھیے کہ جانوروں کے حقوق کی بھی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری چیزیں بتا کر کیا سکھا رہے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ نہ لو. حدیث میں آتا ہے کہ جانور جو ہوتے ہیں ان کو سواری تو بنانا ہے لیکن ان کو کرسی نہ بناؤ. مثلا کہ جانور پہ بیٹھ کے آپ باتیں کر رہے ہیں, جیسے کبھی گاڑی والے دو لوگ آپس میں کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں. اب گاڑی تو بے چین ہے نا, بے جان ہے, اس کا تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن جانور کے اوپر کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اس سے یعنی جانور کھڑا ہے اور آپ بیٹھے رہے, اس سے جانور کو زیادہ بوجھ پڑتا ہے. جب وہ خود چلتا ہے نا تو اس کے اندر انرجی پروڈیوس ہوتی ہے, تو وہ آپ کا بوجھ برداشت کر لیتا ہے اور وہ بیلنس بھی ہو جاتا ہے. تو پتا کیا چلا کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر ادا کرو. آج لوگ اینیمل رائٹس کی بات کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اینیمل رائٹس میں سب سے بڑے رائٹس ہیں کہ ان نعمتوں کو اللہ کے راستوں میں استعمال کرو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جانوروں کو بلا وجہ قید نہیں کرنا چاہیے. آج پیٹس بنانے کا رواج ہے, लेकिन वो मारूफ वाक्या जो हम शायद बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक औरत जो बिल्ली को घर में रखती है और उसके बाद उसके खाने पीने का इंतजाम ना कर सकी और वो भूख की वजह से मर गई, और उसकी वजह से नमाजें रोजे पढ़ने के बावजूद भी वो औरत जो थी वो आग में चली गई। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन तमाम जानवर जो बेजुबान है इनके हकूक को पूरा करने की तौफीक दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा एक ऊंट आया और वो बिलबिला रहा था और अपने मालिक का शिकवा किया उसने कि मेरा मालिक मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बोझ डाल देता है। फरमाए वो तुम्हारे लिए बोझ ढोकर ऐसे ऐसे मुकाम तक ले जाते हैं जिसे तुम सख्त मेहनत के बगैर नहीं पहुंच सकते थे। हकीकत यह है कि तुम्हारा रब लराउफुर रहीम बड़ा ही शफीक और मेहरबान है। इसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम इन पर सवार हो और वो तुम्हारी जिंदगी की रौनक बने। आज एक छोटा सा अपने लिए काम लिख लें, अभी कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे यकीन है जो लोग नॉर्वे में रहते हैं वो तो बड़े आराम से कर सकते हैं क्योंकि रात बहुत लंबी होती है। अगर आप सिर्फ से मगरिब के बीच में वॉक के लिए जाए तो आपको आम तौर पर ऐसी चीजें पहाड़ों की तरफ दिखती हैं। थोड़ा सा कोशिश करके अगर किसी फॉर्म में चले जाए, और आप लोग भी इस पे अपने लिए काम लिख लें, आज नहीं भी कर सकते तो जो ही मुमकिन हो कि आपने अपने बच्चों को साथ लेकर कोई ऐसा फॉर्म विजिट करना है कि जहाँ ये सब जानवर हो, और करीब से हाथ लगाएं, प्यार करें। बिल्ली को आप देखते हैं, जब आप देखते हैं तो बिल्ली और लगती है, लेकिन जब आप उसको छूते हैं, उसके बालों को हाथ लगाते हैं तो हकीकत में आपके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह के जज्बे आते हैं। इन जानवरों पे गौर करना चाहिए। शक्ल में देखे मिलते हैं खैल, बिगाल और हमीर, तीनों एक ही किस्म की नस्ल है थोड़े बहुत फर्क से, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि देखो ये तुम्हारी जीनत भी है, वो और बहुत सी चीजें तुम्हारे फायदे के लिए पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म तक नहीं है, और अल्लाह ही के जिम्मे सीधा रास्ता बताना है जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हैं। ये है असल में अल्लाह की बात। अल्लाह ताला एक इंसान को हिदायत देता है और देना चाहता है। जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देता है और सीधा रास्ता दिखाता है तो फिर अगर इंसान उस पे अड़ी करे, चूं चां करे, हूं हां करे, तो अल्लाह ताला फिर कहता है तुम टेढ़े रास्तों पे ही चले पड़ो। तो यह नियत कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह जब मुझे हिदायत का रास्ता नजर आए तो फिर मुझे उसको पाने की तौफीक देना। फरमाए वलौ शा लहदाकुम अजमईन, अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। देखिए हिदायत का ताल्लुक पहले दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से लेकर हुदल्लिल मुत्तकीन। तो हिदायत का ताल्लुक तकवा के साथ होता है। उसे हिदायत नहीं मिलेगी जिसके अंदर तकवा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कैसे लोगों की हिदायत का इंतजाम किया, अगर इसको हम एक जगह जमा करें तो तकरीबन 10 मुख्तलिफ दर्जे हैं हिदायत के। सबसे पहले अल्लाह ने अंबिया से खुद कलाम किया, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, कल्लमुल्लाहु मूसा। गोया कि इसमें पीछे क्या था, आप ये सारी बातें सुनते हुए अपना नाम लिख के सोचें, ये सब कुछ अल्लाह ने मुझे हिदायत देने के लिए किया कि मूसा से कलाम किया। फिर एक दूसरा तरीका होता है वही के जरिए पैगाम दिया, वही दिल में डाल दी। फिर तीसरी चीज फरिश्ते के जरिए फरिश्ता भेजा, और अमूमन जो फरिश्ता वही लेकर आता था वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। फिर इसी तरह एक चौथा दर्जा था दिल में इल्का किया, दिल में डाल देता अल्लाह ताला, कभी आपके भी डालता है, दिल में खैर डल जाती है, हाँ ये फैसला ठीक है ये कर लो। दिन रात हम ऐसी अल्लाह से हिदायत मांग रहे होते हैं, इस्तखारा इसी की एक दलील है। तो जब इंसान अल्लाह से किसी काम को चाहता है तो अल्लाह ताला उसको फुरकान देता है। और याद रखिए जितनी अल्लाह से दोस्ती होगी, जितना सच्चे होते जाएंगे, अल्लाह आपको लोगों से डील करना, मामलात को देखना, हालात के मुताबिक बात करना, ये सब कुछ सिखा देंगे। फिर एक और दर्जा होता है हिदायत का कि अल्लाह किसी को जबरदस्त किस्म का फहम दे देता है। आगे हम वाक्य पढ़ेंगे कि हजरत दाऊद हालांकि बाप थे, वो एक मुकदमे का फैसला वैसे नहीं कर सके जैसे हजरत सुलेमान ने कर दिया। तो बस दफा बच्चों को हमसे ज्यादा फहम मिल जाता है। फिर एक छठा दर्जा क्या होता है कि बयान की ऐसी कुव्वत दे देता है कि लोग तस्वुर को हकीकत बनाकर पेश कर देते हैं, यानी इमेजिनेटरी स्टाइल होता है। कुछ लोग बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि आप उनकी मिसालों के साथ साथ चलते जा रहे हैं, कुछ सीधा स्पार्ट बोलते रहते हैं, कुछ जोर से बात करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ये ताकत देता है कि उनकी बात सुनकर सीधी दिल में जाती है। ऐसे लगता है कि जो बात इन्होंने कही वो हम आंखों से देख रहे हैं, ये अल्लाह की रहमत होती है, हर एक को नहीं मिलती। इसको आप कह सकते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड होती है, ना हो तो मांगे, दुआ करें अल्लाह ये गिफ्ट मुझे भी चाहिए, अल्लाह ताला हमें भी दे देगा इंशाअल्लाह ताला। फिर इसी तरह से एक ऐसा दर्जा हिदायत का कि अल्लाह ताला ऐसा बयान किसी की जुबान से जारी करवा देता है कि उसमें अल्लाह की तायद शामिल हो जाती है। یعنی جو بات کسی گناہ گار انسان کی زبان سے نکل نہ رہی ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی بات ڈلوا دیتا ہے کہ فیل ہوتا ہے کہ اللہ کی بات ہے. جیسے حضرت عمر, کئی جگہ قرآن ان کی موافقت میں نازل ہوا, خود کہتے تھے قرآن کی 3 آیتیں میری تائید میں نازل ہوئی ہیں جس میں ایک پردے کی آیت بھی تھی, حجر اسود کے بارے میں اور صفا اور مروہ کے بارے میں کچھ آیات آتی ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتا ہے ایسا کر دیتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے اور وہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات کی توفیق دے دیتا ہے کہ اس کی بات دل میں جذب ہو جاتی ہے, یعنی دل اس بات کو قبول کرنے لگتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس کے اندر الہام آتا ہے, بعض لوگوں کو الہام ہو جاتا ہے. کوئی کسی کو وہ نہیں آ سکتا جس کو آج اب تصوف کی زبان میں کشف اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں, اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. اور حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ عمر صاحب الہام ہے. ساریہ کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا میری ہی زبان سے کہ کہاں حضرت عمر مدینہ میں تھے اور ساریہ ملک شام میں تھے, اور یہاں سے وہاں کھڑے ہو کے آواز دے رہے ساریہ الا جبل, پہاڑ کی طرف چلے جاؤ, اور وہاں ان کو بھی آواز سنا دی. تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اسی طرح سچے خواب آتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یعنی سمال قبول ہے کہ کسی کی بات سن کے خود بخود ماننے کو دل کرتا ہے. تو بہرحال اس میں جتنی بھی باتیں ہمیں سمجھ آ سکیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے.